लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पाप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में पोप फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया। प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासों को प्रभु के साथ अपनी व्यक्तिगत मुलाकातों पर चिंतन करने हेतु आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात, शुभ रविवार।
Oggi il Vangelo ci riporta alla sera di Pasqua.
आज सुसमाचार पाठ हमें पास्का शाम की ओर वापस लेता है। प्रेरित पिछली प्यारी के कमरे में एकत्रित हैं। तभी दो शिष्य एमाउस से लौटते और यीशु के साथ अपनी मुलाकात के बारे बतलाते हैं। और जब वे अपने अनुभव की खुशी व्यक्त करते हैं तो पुनर्जीवित प्रभु पूरे समुदाय के सामने प्रकट होते हैं। यीशु ठीक उसी समय आते हैं जब शिष्य उनके साथ अपनी मुलाकात की कहानी बतला रहे थे। संत पापा ने कहा,
Questo mi fa pensare che bello condividere sull'importanza di condividere la fede.
यह मुझे सोचने के लिए प्रेरित करता है कि बतलाना कितना अच्छा है, विश्वास को साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें पुनर्जीवित यीशु में विश्वास व्यक्त करने के महत्व के बारे सोचने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन हम पर हजारों संदेशों की बमबारी होती है, कई सतही और बेकार होते, कुछ अविवेकपूर्ण जिज्ञासा प्रकट करते और इससे भी बदतर कुछ खबरें गपशप या द्वेष से उत्पन्न होते हैं। ये ऐसी खबरें हैं जो बेकार हैं, बल्कि दुख पहुंचाती हैं। लेकिन अच्छी सकारात्मक और रचनात्मक खबरें भी हैं और हम भी जानते हैं कि अच्छी बातें सुनना कितना अच्छा लगता है और जब ऐसा होता है तब हम कितना बेहतर महसूस करते हैं। और हमें उन वास्तविकताओं को भी साझा करना अच्छा है जिन्होंने बेहतर या बदतर तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित किया है ताकि दूसरों की मदद की जा सके। फिर भी एक चीज है जिसके बारे बात करने में हमें अक्सर कठिनाई महसूस होती है। संत पापा ने कहा, हम किस चीज के बारे बात करने में कठिनाई महसूस करते हैं? हमें सबसे खूबसूरत चीज बतानी है, यीशु के साथ हमारी मुलाकात को। हम में से प्रत्येक जन ने प्रभु से मुलाकात की है और हम इसके बारे में बात करने में कठिनाई महसूस करते, जबकि हर एक जन इसके बारे में बहुत कुछ कह सकता है। दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन अनूठे क्षणों के बारे बतलाने के लिए जिसमें हमने प्रभु को जीवित और करीब महसूस किया, जिन्होंने हमारे दिलों में खुशी जगाई या आंसू सुखा दिए, जिन्होंने विश्वास और सांत्वना, शक्ति और उत्साह का संचार किया या क्षमा और कोमलता से भर दिया। संत पापा ने कहा, हमें यीशु के साथ हुई इन मुलाकातों को बांटना और आगे बढ़ाना चाहिए। इससे परिवार में, समुदाय में, दोस्तों के साथ साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। उन अच्छी प्रेरणाओं के बारे में बात करना अच्छा है जिन्होंने हमारे जीवन का मार्गदर्शन किया है। अच्छे विचार और भावनाएं हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं और उन प्रयासों और कोशिशों के बारे में भी बात करना है जो हमें विश्वास के मार्ग को समझने और आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, शायद पश्चाताप करने और अपने कदम वापस लेने के लिए भी। यदि हम ऐसा करते हैं तो जैसा कि पास्का शाम को एमाउस के शिष्यों के साथ हुआ था, यीशु हमें आश्चर्यचकित कर देंगे और हमारी सभाओं और हमारे वातावरण को भी और सुंदर बना देंगे। संत पापा ने विश्वासों का आह्वान करते हुए कहा,
Proviamo allora a ricordare adesso un momento forte della nostra vita, un incontro decisivo di Gesù.
To aaiye ab hum hamare jeevan mein ek mazboot kshan Yesu ke saath ek nirnayak mulaqat ko yaad karne ka prayas kare. यह अनुभव हर एक के पास है. हम सभी ने प्रभु से मुलाकात की है. आइए थोड़ी देर मौन रहें और सोचें, मुझे प्रभु कब मिले, प्रभु मेरे निकट कब आए. हम मौन में चिंतन करें और प्रभु के साथ हुई इस मुलाकात को उनकी महिमा के लिए क्या मैंने दूसरों को बतलाया और साथ ही क्या मैंने दूसरों की बात सुनी जब उन्होंने मुझे यीशु के साथ अपनी मुलाकात को बतलाया. तब माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए संत पापा ने कहा,
La Madonna ci aiuti a condividere la fede per rendere le nostre comunità.
माता मरियम हमारे समुदायों को प्रभु के साथ मुलाकात के लिए अधिक बड़ा स्थान बनाने हेतु विश्वास साझा करने में हमारी मदद करें. इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया.
Regina Celi Letari, Alleluia.
Quia quem eruisti portare, Alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude, Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini Jesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quaesumus, oper eius genitrice. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
Seguo nella preghiera e con preoccupazione anche dolore.
मैं प्रार्थना और चिंता साथ ही दुख से पिछले कुछ घंटों में ईरान के हस्तक्षेप के कारण इसराइल में स्थिति खराब होने की खबर सुन रहा हूँ. मैं ऐसे किसी भी कार्रवाई को रोकने की हार्दिक अपील करता हूँ जो मध्य पूर्व को और भी बड़े युद्ध संघर्ष में घसीटने के जोखिम के साथ हिंसा को बढ़ावा दे सकती है. दूसरों के अस्तित्व को खतरा किसी को भी नहीं पहुंचाना चाहिए. इसके बजाय सभी देशों को शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और इसराइलियों एवं फिलिस्तीनों को दो राष्ट्रों में साथ साथ सुरक्षा में रहने में मदद करनी चाहिए. यह उनकी गहरी और वैध इच्छा है और यह उनका अधिकार है जो दो पड़ोसी राष्ट्र हैं. संत पापा ने कहा, गजा में शीघ्र युद्ध विराम हो और दृढ़ता के साथ बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए. उस जनता की मदद की जाए जो मानवीय आपदा में फंस गई है और महीनों पहले अपहृत बंधकों को तुरंत रिहा किया जाए. उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ रहा है. हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. बहुत हो गया युद्ध, बहुत हो गया आक्रमण, हिंसा बहुत हो गई. आइए हम संवाद के लिए और शांति के लिए हाँ कहें. तत्पश्चात संत पापा ने पौत्र हृदय यूनिवर्सिटी की याद की जो अपने शतवर्ष से राष्ट्र दिवस मना रहा है. उन्होंने कहा,
Oggi in Italia si celebra la centesima giornata nazionale per l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
आज इटली में भविष्य के लिए प्रश्न आत्मपरक और चाह के बीच युवा विषय पर कार्तिक यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्रेट हार्ट अपना सवा राष्ट्र दिवस मना रहा है. संत पापा ने कहा, मैं इस महान विश्वविद्यालय को अपनी महत्वपूर्ण शैक्षणिक सेवा और अपने मिशन के प्रति वफादार और आज के युवाओं एवं सामाजिक जरूरतों के प्रति चौकस रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ. उसके बाद संत पापा ने रोम एवं इटली तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया. उन्होंने बच्चों का सास्नेह अभिवादन किया और कहा, मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए बच्चों का सास्नेह अभिवादन करता हूँ और उन्हें याद दिलाया कि 25 और 26 मई को कलीसिया पहला विश्व बाल दिवस मनाएगा. संत पापा ने कहा, मैं सभी को प्रार्थना के साथ इस आयोजन प्रथम विश्व बाल दिवस की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो इसे तैयार करने का काम कर रहे हैं. तब पोप ने बच्चों से कहा,
E a voi bambine e bambini dico vi aspetto.
और आप बालक और बालिकाओं, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ. हमें विश्व को एक बेहतर, एक शांतिमय दुनिया बनाने के लिए आपकी खुशी एवं इच्छा की आवश्यकता है. आइए हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें जो युद्ध से पीड़ित हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं यूक्रेन में, फिलिस्तीन में, इसराइल में और दुनिया के अन्य हिस्सों में और म्यांमार में भी. हम उनके लिए एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें. और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए संत पापा ने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की.
Buon pranzo e arrivederci.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 2025 जुबली वर्ष के पहले संत पापा फ्रांसिस ने 2024 को प्रार्थना वर्ष घोषित किया है। सोमवार 15 अप्रैल को संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों को प्रार्थना करने हेतु प्रेरित करते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, येसु ने बुराई पर विजय प्राप्त की है, अपने क्रूस को पुनरुत्थान के पुल में बदल दिया। उसकी स्तुति और आशीर्वाद देने के लिए प्रतिदिन अपने हाथ उसकी ओर उठाएं। पुनर्जीवित प्रभु को अपने दिल की उम्मीदें बताएं और अपने गहरे रहस्य उसके साथ साझा करें। ईश्वर को इस प्रकार की जीवंत, ठोस और हृदय से की गई प्रार्थना पसंद है। और मोनसिनियर फिलिपो चंपानेल्ली को संत पापा फ्रांसिस ने पूर्वी कलीसियाओं के लिए बने विभाग के नए उप सचिव के रूप में नियुक्त किया। अब तक वे राज्य सचिवालय के सामान्य मामलों के अनुभाग में सेवारत नंशियेचर काउंसलर हैं। मोनसिनियर चंपानेल्ली का जन्म 30 जुलाई 1978 को नवारा, इटली में हुआ। नवारा धर्म प्रांत के लिए 21 जून 2003 को उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। उन्होंने रोम के पोंटिफिकल ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1 जुलाई 2009 को पोंटिफिकल एक्लेसियास्टिकल अकादमी के पाठ्यक्रमों में भाग लेने के बाद उन्होंने परम धर्मपीठ की राजनयिक सेवा में प्रवेश किया। उन्होंने जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और बेलारूस में प्रेरितिक राजदूतावास में काम किया। 2015 से वे राज्य सचिवालय के सामान्य मामलों के अनुभाग में सेवारत हैं। और संत पापा फ्रांसिस सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले से दुखी हैं, जिसमें 6 लोग मारे गए। उन्होंने पीड़ितों को अपनी प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन दिया। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक टेलीग्राम में सिडनी के महाधर्माध्यक्ष एंटोनी फिशर को संबोधित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक स्थानीय शॉपिंग सेंटर में हुए हिंसक हमले के बारे में जानकर गहरा दुख व्यक्त किया, जहां 6 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। संत पापा ने इस संवेदनहीन त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के लिए आध्यात्मिक निकटता व्यक्त की और विशेष रूप से अपने प्रियजनों के मौत का शोक मनाने वालों के लिए, घायलों और सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों के लिए प्रार्थना की। टेलीग्राम में उन्होंने राष्ट्र पर सांत्वना और शक्ति के दिव्य आशीर्वाद का आह्वान किया। स्थानीय पुलिस ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को बताया कि हमले का अपराधी एक 40 वर्षीय व्यक्ति था, जिसे पुलिस जानती है, जो औपचारिक पहचान की प्रतीक्षा कर रहा है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का मानना है कि यह कृत्य किसी वैचारिक मकसद या आतंकवाद से प्रेरित नहीं था, हालांकि जाँच जारी है। हम प्रथम विश्व युवा दिवस को आयोजित करने वाले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की महान प्रेरणा के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम संत पापा बेनेडिक्ट 16वें, संत पापा फ्रांसिस को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने विश्व युवा दिवस को कलीसिया के एक अपरिहार्य क्षण के रूप में जिया है। उक्त बात संस्कृति और शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टोलेंटिनो ने कही। उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में युवाओं की पहली सभा के 40 साल बाद संत लॉरेंस सेंटर में पवित्र मिसा के दौरान शनिवार शाम को ये बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्व युवा दिवस ने कलीसिया के दिल में आशा, प्रेम, युवाओं के फल, बसंत ऋतु के फल पैदा किए हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि येसु सभी को यह कहते हुए आमंत्रित करते हैं, आओ, छुओ, देखो और खाओ। ईसा मसीह मानव व्यक्ति के जीवन में निर्णायक है। ईसा का महत्व कोई अमूर्त सैद्धांतिक सत्य नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे हमने छुआ है। उन्होंने बतलाया कि विश्व युवा दिवस के दौरान दुनिया भर के युवा आस्तिक होने, मानव भाईचारे का एहसास करने, गले लगाने, प्रार्थना करने, आराधना करने, सुनने, हंसने, रोने और कलीसिया के इस अनुभव को संजोने की खुशी का अनुभव करते हैं। यह जीवन को बदल देता है, महान लोगों के जीवन को बदल दिया है और हमारे जीवन, हमारी कहानी को बदलना जारी रखता है। मसीह नहीं चाहते कि हम दर्शक बने, मसीह चाहते हैं कि हम गवाह बने, और गवाह वह है जो कहता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैंने कानों से सुना है, मैंने छुआ है। यह हमें एक मिशनरी कलीसिया, एक बाहर जाने वाली कलीसिया का सदस्य बनाता है। अगले दिन रविवार 14 अप्रैल को संत लॉरेंस सेंटर में पुरोहितों के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल लाजर की अध्यक्षता में पवित्र मिसा समारोह का आयोजन किया गया। पवित्र मिसा के बाद संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उस पहली विश्व युवा सभा को याद करते हुए कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। अगला विश्व युवा दिवस 2027 में सियोल दक्षिण कोरिया में होगा। उस आयोजन से पहले 2025 में रोम में एक युवा जयंती होगी। उधर पोलिस धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने रविवार 14 अप्रैल को वारसा में जीवन के लिए राष्ट्रीय मार्च को बढ़ावा दिया, जो पोलैंड लंबे समय तक जीवित रहे आदर्श वाक्य के तहत आयोजित किया गया था। इस आयोजन ने जीवन के प्रति प्रतिज्ञान की अभिव्यक्ति की, लेकिन गर्भपात तक पहुंच बढ़ाने और इस तरह आजन्म में बच्चों के लिए सुरक्षा को कम करने के उद्देश्य से मसौदे कानूनों का विरोध भी किया। इस वर्ष के जीवन के लिए राष्ट्रीय मार्च के आदर्श वाक्य के अर्थ पर इसकी प्रवक्ता लीडिया ने चर्चा की। उन्होंने वाटिकन न्यूज को बताया, हमारा मार्च जीवन की पुष्टि, परिवार की पुष्टि, हर इंसान के सभी बुनियादी अधिकारों की पुष्टि है, लेकिन साथ ही इस क्रांति के सामने जो आगे बढ़ रही है, जो माता पिता के अधिकारों और लोगों के जीवन के अधिकारों को सीमित करना चाहता है, हम जनसांख्यिकीय पतन और यूरोप में प्रवेश करने वाले इस बेतहाशा भीड़ को रोकने के लिए अवज्ञा के एक मजबूत संकेत में मार्च कर रहे हैं। यह हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारे मार्च में हर किसी को बोलने का अधिकार है। प्रदर्शन का आयोजन करने वाले संत बेनेडिक्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष बोगुस्लाव किर्निकी ने घोषणा की, पोलिस संसद में चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तब तक दृढ़ रहेंगे जब तक कि आजन्मे बच्चों के अधिकारों की गारंटी नहीं मिल जाती। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।